आस्तिक कपड़े बदल रहा था तभी उसने घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जल्दी से कपड़े पहनकर आस्तिक बाहर आया तो हैरान रह गया। घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में बड़े बड़े मोटे डंडे और हॉकी स्टिक थी। उनमें से एक आदमी जो सबसे आगे था अपने हाथों में पिस्तौल लिए खड़ा था। आस्तिक घूमती हुई नज़रों से सबको देखने लगा। वहीं दादी और शंभू अपने हाथ जोड़े उन लोगों के सामने खड़े थे। वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए शंभू और दादी को देखता है और फिर शंभू से कहता है, पिछली बार तुझे बोला था ना कि इस महीने पूरा पैसा चाहिए, साला तू पैसे लेकर बैठ गया और ऊपर से देने का नाम भी नहीं ले रहा। मैंने क्या भिखारियों के लिए कोई संस्था खोल रखी है जो तुम जैसे लोगों को पैसे देता रहूं और तुम लोग मेरा पैसा खाकर यहां सुकून की नींद सो जाओ? चुपचाप मेरा पैसा वापस कर, वरना अभी यहीं तुम दोनों को मारकर तुम्हारे इस घर को बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। तभी अरुणिमा भी वहां आ गई। थोड़ी दूरी पर गांव की औरतें खड़ी थीं और अरुणिमा भी उन सबके बीच खड़ी होकर ये तमाशा देख रही थीं। दादी ने अपने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से कहा, बेटा हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अभी के लिए यहां से चले जाओ, घर में मेहमान हैं, हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसे में बाहर वालों के सामने हमारा तमाशा मत बनाओ, वैसे भी तुमने गांव में हमारी इज्जत छोड़ी ही कहाँ है। अपने हाथों में हथियार लिए वो आदमी दादी को देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, अच्छा अब तू हमें ज्ञान देगी, एक पैर कब्र में है और ज्ञान तेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ, और क्या कहा, घर में मेहमान है तो हमारे पैसों से मेहमानों की आबोभगत हो रही है, चल अगर तू पैसा नहीं देगी तो तेरे मेहमान पैसा देंगे, लेकिन पैसा तो आज चाहिए ही चाहिए। शंभू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया ये कैसी जबरदस्ती है, मैंने आप लोगों से सिर्फ 20,000 रुपए लिए थे और उस पर इतना ज्यादा ब्याज लगा दिया, मैं 40,000 भर चुका हूँ, गरीब आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊं, जितना कर्जा लिया था उससे कहीं ज्यादा तो ब्याज चुका चुका हूँ, और आप ही सोचिए मैंने कौन सा गलत काम के लिए पैसा लिया था, खेती के लिए लिया था, अब फसल खराब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं फिर भी आपका पैसा चुका रहा हूँ ना, बस इस बार थोड़ा लेट हो गया हूँ, जैसे ही फसल बेचूंगा आपका पैसा चुका दूंगा। आप लोग हम गरीबों पर इतना जुल्म करते हो, लेकिन जो लोग देश में बड़े बड़े घोटाले करके भाग जाते हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। शंभू के घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि वे ठेकेदार खड़े थे जिन्होंने उसे ब्याज पर पैसे दिए थे ताकि वो अपनी खेती में बीज लगा सके और अच्छी फसल करके कमाई कर सके। लेकिन अफसोस उस साल बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई और जो बची थी उसे कीड़ों ने खा लिया। उस साल बहुत से किसानों को नुकसान हुआ था जिनमें से एक शंभू भी था। पिछले एक साल से शंभू अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा था। जो भी फसल उसके खेत में होती उसमें से सिर्फ जरूरत भर का रखकर बाकी वो बेच देता था और कर्ज उतारता था। लेकिन अफसोस असली कर्ज से ज्यादा तो ब्याज दे चुका था, फिर भी ठेकेदारों का लालच खत्म नहीं हुआ। वे हर महीने आकर पूरे गांव के सामने उसे बेइज्जत करते थे। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। इस बार उनके घर में आस्तिक था और वो खुद ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था। ठेकेदार ने शंभू की बात पर गुस्से में आकर कहा, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ और ना ही तेरा ज्ञान लेने आया हूँ, मैं यहाँ बस अपना पैसा लेने आया हूँ, अगर अभी की अभी मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरी जान ले लूँगा और फिर तेरे शरीर के हर एक हिस्से को बेचकर अपना पैसा वसूल करूँगा। ये कहते हुए ठेकेदार ने अपनी बंदूक शंभू की तरफ कर दी। तभी दादी वहाँ आ गई और ठेकेदार के सामने हाथ जोड़कर किड़किड़ाने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, इसे मत मारो, मेरी बुढ़िया का यही एक सहारा है, इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, हम कह तो रहे हैं ना दिन रात मेहनत करके तुम्हारा पैसा चुका देंगे, बिना चुकाए मरेंगे भी नहीं, लेकिन मेरे पोते को मत मारना। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसका दिल घबरा रहा था। जिस परिवार को उसने हंसते मुस्कुराते हुए देखा था असल में उनके जीवन में बहुत दर्द था। आज उसने पैसों की अहमियत अपनी आंखों के सामने देखी थी। इंसान पैसों के लिए सामने वाले की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहा है, सच में इंसानों ने इंसानियत को खत्म कर दिया है। ठेकेदार शंभू की तरफ अपनी बंदूक आगे करता है और ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहता है, पैसा दे वरना अभी गोली चला दूंगा। तभी दादी जल्दी से कहती हैं, रुक जा बेटा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं ये तुझे देती हूँ, लेकिन मेरे पोते को कुछ मत करना। ऐसा कहते हुए दादी ने अपनी साड़ी का आंचल खोला और उसमें से 500 का एक नोट निकालकर ठेकेदार की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी मेरे पास बस इतने ही हैं, लेकिन मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी, भले ही मुझे सड़क पर जाकर भीख मांगनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पैसे दिए बिना मैं मरूंगी नहीं, बेटा मेरे पोते को छोड़ दो। बेशरम ठेकेदार इतनी आसानी से कहां मानने वाला था, लेकिन 500 से उसके आज के दारू का कोटा तो हो ही जाता, इसीलिए उसने हाथ बढ़ाते हुए नोट पकड़ने ही वाला था। तभी बोला, चल आज के लिए काम चला लेता हूँ, लेकिन कल तक मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। पर इससे पहले कि वो नोट छू पाता वहां आस्तिक आ जाता है और ठेकेदार का हाथ पकड़ लेता है। ठेकेदार ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में घूरते हुए आस्तिक को देखा तो आस्तिक भी अपनी तीखी निगाहों से ठेकेदार को देखते हुए कहता है, चला गोली,
ठेकेदार की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि दादी और शंभू दोनों का चेहरा डर से भर जाता है। दादी जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो? अगर ठेकेदार ने गोली चला दी तो मेरा शंभू मर जाएगा, मैं इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। आस्तिक ने अपनी तीखी निगाहों से दादी को देखकर कहा, कुछ नहीं होगा शंभू को, क्योंकि इस गन में गोली ही नहीं है, ये बस आपको डरा रहा है। सारे गाँव वाले अचानक ठेकेदार को हैरानी से देखने लगे, लेकिन ठेकेदार के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। उसने जल्दी से अपना हाथ आस्तिक की पकड़ से छुड़ाया और गुस्से में बोला, ओए कौन है तू, हमारे बीच क्यों बोल रहा है? ये मेरे और शंभू के परिवार की बात है, तो कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? बताया तो अभी अभी दादी ने, आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला। इस घर में मेहमान हूँ, मैं तो बस यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले सोचा कि दादी के हाथ की बनी रोटी का कर्ज चुका दूं। तुम्हारी गन? आस्तिक ने गन की तरफ इशारा किया तो ठेकेदार बौखला गया और अपनी गन को देखने लगा। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गन 2008 की विक्ट्री गन कलेक्शंस SMS राइजिंग 9mm EP45 मॉडल की गन है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि मिनटों में किसी भी इंसान की जान ले सकती है और शरीर के आर पार निकल जाती है। वैसे अगर ये गन सही कंडीशन में होती तो इससे कोई भी बच नहीं सकता था, लेकिन तुमने इसकी जो हालत कर रखी है उसके हिसाब से ये करीब 4-5 सालों से खराब पड़ी है। इसके अलावा इसकी बॉडी पर बहुत जंग लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये ठीक से फायरिंग भी नहीं कर सकती, और जिस तरह से तुमने इसे बड़ी आसानी से हवा में उछाल दिया उससे साफ पता चलता है कि इसके अंदर बुलेट नहीं है। ऊपर से दिखने में तो ये गन बहुत यूनिक लग रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली है। तुमने इसे सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है ताकि लोगों को डरा सको।
ठेकेदार की आंखें फटी रह गईं और वो घबरा गया, उसके माथे पर पसीने आ गए थे। सच में उसने इस गन को सिर्फ दिखावे के लिए रखा था ताकि गांव वालों को डराया जा सके, लेकिन आस्तिक ने उसका झूठ पकड़ लिया। आस्तिक उसकी आंखों में डर साफ देख सकता था, यही तो उसकी खासियत थी, वो किसी भी इंसान के चेहरे पर डर को महसूस कर सकता था। उसने एक डेविल स्माइल के साथ ठेकेदार को घूरते हुए कहा, असली गन कैसी होती है कभी देखी है? जानते हो जब असली फायरिंग होती है तो कैसा शोर होता है? ठेकेदार ने डर के मारे आस्तिक को देखा, पर तभी वहां गोलियों की बौछार होने लगी। पूरा माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा और आसमान में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी।